अरुणिमा आस्तिक को ढूंढने निकली थी और उसे हर जगह तलाश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि ये सही है या गलत, परंतु उसका दिल कह रहा था कि आस्तिक किसी मुसीबत में है और उसे उसे ढूंढना ही है। धीरे धीरे अरुणिमा पहाड़ी इलाके से सड़क की ओर आ रही थी। उसने देखा कि एक बार फिर घना कोहरा छा रहा है और धीरे धीरे मौसम बारिश का होने लगा है। ये देखते ही अरुणिमा के दिल में और भी बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि आस्तिक का कुछ पता नहीं चल रहा था और ऐसे में अगर मौसम फिर से खराब हो जाएगा तो वो खुद भी तूफान में फंस सकती थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी, वो काफी देर से चल रही थी और आस्तिक अभी भी नहीं मिल रहा था। आखिरकार बारिश फिर से शुरू हो गई। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे तूफान भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। भले ही पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। एक बार के लिए तो अरुणिमा ने यह भी सोचा कि हो सकता है आस्तिक किसी दूसरे रास्ते से वापस फार्म हाउस पहुंच गया होगा, परंतु अगर वो वापस नहीं आया होगा तो अरुणिमा फिर से उसे ढूंढने के लिए इतनी दूर नहीं आ सकती थी, इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। अरुणिमा ये सब सो ही रही थी कि तभी पीछे से एक गाड़ी ने रुकते हुए उसे आवाज़ दी। हेलो मैडम, आपको लिफ्ट चाहिए? गाड़ी में बैठा व्यक्ति बोला। अरुणिमा ने देखा कि उस गाड़ी में एक दंपत्ति बैठे हुए हैं और वो महिला पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। शायद उसी ने अरुणिमा को देखकर गाड़ी रोकने का इशारा किया था। उन दोनों को देखकर अरुणिमा ने जल्दी से सर हिलाया, क्योंकि ये दोनों शादीशुदा कपल थे और एक लड़की भी साथ में थी, तो अरुणिमा ने लिफ्ट लेना सही समझा। वो अब ज्यादा चलने में भी असमर्थ हो रही थी और उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। आस्तिक को ढूंढने के लिए वो सिर्फ छाता लेकर घर से निकली थी, एक बोतल पानी भी उसने साथ नहीं रखा था। जल्दी से पिछली सीट पर बैठते हुए अरुणिमा उन दोनों को देखकर बोली, थैंक यू सो मच, प्लीज आप मुझे आगे हाईवे तक छोड़ देंगे? एक्चुअली हम लोग दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तो हम आपको जहां पर हाईवे स्टार्ट होता है वहां तक छोड़ सकते हैं, वो औरत अरुणिमा को देखते हुए बोली। अरुणिमा के लिए इतना भी काफी था, उसने जल्दी से सर हिलाते हुए कहा, ठीक है आप मुझे वहां तक छोड़ दीजिए, वहां से आगे मैं खुद देख लूंगी। उसके बाद वो औरत ने पानी की बोतल अरुणिमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप पानी पियेंगी? अरुणिमा को सच में प्यास लग रही थी, उसने जल्दी से पानी लिया और उसे पी लिया। उसे बहुत आराम मिला। उन दोनों पति पत्नी ने अरुणिमा को हाईवे के बिल्कुल किनारे पर लाकर छोड़ दिया और उसके बाद वे लोग अपनी दूसरी दिशा की तरफ चले गए। अब तक बारिश भी तेज हो गई थी और तेज हवाएं भी चल रही थी। अरुणिमा ने अपना छाता निकाला और उसे हाथ में पकड़ते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसे दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे घना कोहरा और बारिश की बूंदें उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन काफी आगे बढ़ने के बाद भी उसने देखा कि आस्तिक कभी भी उसे नहीं मिला है। अब तो अरुणिमा की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर आस्तिक को ढूंढने का विचार उसने वहीं पर त्याग दिया। उसे वापस जाने के लिए भी किसी से लिफ्ट लेना होगा और उसे लिफ्ट मिलेगी भी या नहीं ये भी पता नहीं था, लेकिन हिम्मत करते हुए अरुणिमा वापस जाने ही वाली थी कि उसका रेनकोट एक कटीली झाड़ी में फंस गया और वो हैरान हो गई। उसने पलटकर देखा तो उसे झाड़ी में उसका रेनकोट का कोना फंसा हुआ था। उसने उसे खींचना शुरू कर दिया। तभी वहां पर बाइक से दो लड़के आते हैं और अरुणिमा के पास बाइक रोकते हुए कहते हैं, अरे मैडम इतनी बरसात में आप आगे कहां जा रही हैं? आगे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आप वापस जाइए। जंगल के रास्ते में इतना अंधेरा है कि गाड़ियां नजर भी नहीं आ रही हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, एक लड़का बोला। वे लड़के वहां से चले जाते हैं और अरुणिमा खड़े खड़े वहीं कंपनी लगती है। उसके हाथों से उसका छाता छूटकर गिर गया था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने रेनकोट को इतनी तेजी से खींचा कि वो किनारे से फट गया और अरुणिमा तेज कदमों से आगे भागने लगी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही वो थोड़ा और आगे पहुंची तो उसने देखा कि सड़क पर एक गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है और वो इसे देखकर एकदम से चिल्ला पड़ती है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और वो जोर से आस्तिक का नाम चिल्ला रही थी, क्योंकि ये आस्तिक की ही गाड़ी थी, वो इसे पहचान चुकी थी। सब कुछ भूलकर अरुणिमा आस्तिक की गाड़ी की तरफ दौड़ रही थी। अरुणिमा का चेहरा डर से भर गया था। उसने जब गाड़ी के पास जाकर देखा तो पाया कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और आस्तिक गाड़ी के अंदर ही फंसा हुआ था। गाड़ी का सामने का शीशा टूटा हुआ था और कांच के टुकड़े गाड़ी के आसपास बिखरे हुए थे। ये देखकर अरुणिमा बुरी तरह से रोने लगी। उसने धीरे से नीचे झांक कर देखा तो पाया कि आस्तिक अभी भी गाड़ी में मौजूद है। उसकी आंखें बंद है लेकिन उसने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिसकी वजह से वो अभी भी सीट पर ही मौजूद था। डर और बेचैनी की वजह से उसके अंदर अजीब से विचार आने लगे थे। वो जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और कहती है, आस्तिक तुम ठीक तो हो ना? आस्तिक क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? दरवाजा खोलो, तुम्हारे सर से खून निकल रहा है। अरुणिमा बुरी तरह से चिल्ला रही थी लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। ना तो आस्तिक उसके सवालों का कोई जवाब दे रहा था और ना ही कोई प्रतिक्रिया दिखा रहा था। अरुणिमा बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन इस वक्त वो डर के मारे अपना कंट्रोल नहीं खो सकती थी, क्योंकि आस्तिक का एक्सीडेंट हुआ था और इस वक्त आस्तिक को उसकी जरूरत थी। गाड़ी के आगे की तरफ का शीशा टूटा हुआ था। अरुणिमा ने इस टूटे हुए हिस्से से अपना हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरफ बढ़ाया और जिसकी वजह से उसके हाथों में कांच के टुकड़े गड़े और वहां से
से खून निकलने लगा, लेकिन अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कसकर अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील की तरफ खींचा और आखिरकार उसके हाथों में गाड़ी की चाबी आ गई। उसने खींचकर गाड़ी की चाबी को अपने हाथ में लिया। उसके हाथों से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी की चाबी हासिल कर ली। वो चाबी को दरवाजे के पास लाती है और वहां की होल में लगाकर उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही आस्तिक का चेहरा बाहर की तरफ लुढ़क जाता है। उसकी आंखें बंद थी और वो कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा था। अरुणिमा डरते हुए आस्तिक की सीट बेल्ट खोलती है और उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अरुणिमा के सामने आस्तिक का शरीर काफी भारी भरकम था। आस्तिक का आधा शरीर बाहर निकालते ही अरुणिमा की हालत खराब हो गई। उसने जल्दी से आस्तिक को नीचे जमीन पर छोड़ दिया और उसके नाक के पास उंगली रखकर देखने लगी। उसने अपना सर आस्तिक के सीने में रखा और उसकी धड़कनें सुनने की कोशिश की। उसे आस्तिक की फिक्र हो रही थी। उसने पाया आस्तिक की सांस बहुत धीमी चल रही है और धड़कनें भी बहुत धीमी धीमी चल रही है। आस्तिक पूरी तरह से बाहर निकला भी नहीं था और अरुणिमा के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतने भारी भरकम इंसान को अकेले खींचकर बाहर निकाल सके। पर तभी अरुणिमा की नजर इंजन की तरफ जाती है और उसका चेहरा डर से भर जाता है। इंजन से इंजन ऑयल लीक हो रहा था और वहां हल्का हल्का धुआं भी बाहर आ रहा था।
अरुणिमा ने देखा तो इंजन के आसपास बहुत सारा इंजन ऑयल गिर पड़ा है और धुआं अभी भी वहां से बाहर आ रहा था। अरुणिमा को किसी खतरे का अंदाजा होता है। आस्तिक अभी भी आधी गाड़ी में फंसा हुआ था। इसके आगे अरुणिमा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने जल्दी से आस्तिक को वहीं पर छोड़ दिया और कुछ सोचने लगी। पर तभी उसने किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनी। ये उसके लिए एक आखिरी उम्मीद थी। वो इतनी तेजी से दौड़ते हुए सड़क पर जाती है कि अगर अरुणिमा सही समय पर खुद को नहीं रोकती तो यहाँ पर अंधेरे की वजह से उसका खुद का एक्सीडेंट हो सकता था। अरुणिमा ने अपना रेनकोट निकाला और उसे ऊपर हवा में किसी झंडे की तरह लहराने लगी। वो रोते हुए हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। उस गाड़ी के अंदर बैठे आदमी को फेस धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन कुछ सोचते हुए जब उसने अपनी गाड़ी की फ्रंट लाइट ऑन की और अपने सामने किसी लड़की को इस तरीके से बदतर हालात में देखा तो उस आदमी ने जल्दी से गाड़ी को एक तेज झटके के साथ रोक दिया। वो गाड़ी अरुणिमा के पैरों के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। तेज बारिश की बूंदों की वजह से उस आदमी ने ये नहीं देखा कि सामने कौन है, लेकिन उसे कोई लड़की नजर आ रही थी। वो गुस्से में अपनी सीट बेल्ट खोलता है और गाड़ी से बाहर निकलते हुए अरुणिमा पर चिल्लाना शुरू करता है। पागल हो गई हो क्या? मरना है तो कहीं और जाकर मरो। तुम्हें मरने के लिए मेरी गाड़ी? वो आदमी बोला। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज, अरुणिमा रोती हुई बोली। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये अजनबी इंसान इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन है ये अजनबी और क्या ये अजनबी आस्तिक और अरुणिमा की जिंदगी में कोई बदलाव ला सकता है? मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा।